رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف سیرت النبی سے اقتباسات پڑھے جاتے ہیں. پچھلی ہفتے صبر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ صبر کا مفہوم کیا ہے, تو دو مفاہیم بتائے گئے تھے جو صبر سے متعلق ہے کہ ایک تو یہ کہ وقت مناسب کا انتظار کرنا, یعنی مطلب یہ کہ جلدی نہیں مچانا, بعض دفعہ کام خراب ہو جاتا ہے جلدی مچانے سے. مثلا روٹی ہے 5 منٹ میں پکتی ہے تو آپ کہتے ہیں 2 منٹ میں پکا لوں تو نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ روٹی جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی. تو یہ ہے بات ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے جتنا وقت چاہیے اس وقت سے پہلے اس کو نہ چاہنا, یعنی گویا کہ جلدی کی وجہ سے کام کو خراب نہ کرنا. دوسرا مفہوم جو ہوتا ہے وہ بےقرار نہ ہونا, کسی بھی چیز کے لیے بےقرار نہ ہونا. یہ اضطراب اور بےقراری کی جو کیفیت ہے یہ بھی بے صبری سے ہوتی ہے. تیسرا مفہوم یہ ہے مشکلات کو خاطر میں نہ لانا. صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلیں اور خطرے پیش آئیں, دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں اور مخالفین جو طعن و طنز کرے ان میں سے کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کی بجائے اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو. بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں روڑے اکثر اٹکائے گئے مگر انہوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا, یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک فاصبر, اے چادر پوش اٹھو لوگوں کو اشارہ کر اور اپنے پروردگار کے لیے پامردی سر کر, یعنی صبر دے گا. اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہ السلام کو پیش آئے, چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا. یہ جو اصلاح کا کام ہوتا ہے یا لوگوں کو کسی چیز پر جو ان کے لیے مناسب ہو اس پہ قائل کرنا, یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے, مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں. بعض حضرات اللہ تعالیٰ جب ان کو توفیق عطا فرماتے دین کے راستے پہ چلنے کی تو چاہتے کہ ایک دن میں اپنے گھر کے سب احوال بدل لے, تو ذرا تھوڑا سا سوچے کیا وہ ایک دن میں بدل گیا تھا, خود اس نے کتنا ٹائم لیا تھا سمجھتے ہوئے, کتنا ٹائم لیا تھا. تو اگر خود اس نے اتنا ٹائم لیا تو دوسروں کو اتنا ٹائم کیوں دینا نہیں چاہتا, ظاہر ہے اس کے لیے بھی صبر کریں. مجھ سے ایک صاحب بیت ہوئے, مجھ سے کہا کہ میرے بیوی پردہ نہیں کرتی, کیا میں اس کو کہوں کہ پردہ کرے. ابھی شریعت کی بات ہے, ظاہر میری طرف سے میری بات تو نہیں ہے لیکن اصلاح ہے. آپ بالکل اس کو ایک صحیح چیز پر لانے کے لیے بھی کچھ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے, کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کہہ دی اور ہو گیا ہے. مصائب تو اسی وجہ سے آتے, پریشانیاں اور مشکلات, کہ انسان احساس نہ کرے ان چیز اس چیز کا. میں نے کہا ہرگز نہیں, اس کو کہنا نہیں ہے بلکہ بس صرف ایک کام کرے کہ جس طریقے سے بھی ہو ان کو مجلس میں, جو خواتین کی مجلس ہے اس میں لایا کرے, بس آپ کا یہ کام ہوگا. اس سے زیادہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. تقریباً 3 مہینے پابندی سے آتی رہی اپنے شوہر کے ساتھ اور 3rd مہینے کے بعد اس نے کہا کہ میں شاہ صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا تو جو خواتین بیعت ہو رہی تھی ان کے ساتھ وہ بیعت ہو گئی. اب جب بیعت ہو گئی تو اس نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میرا شرعی پردہ ہے. شرعی پردہ, اب شرعی پردہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت سارے دینی گراؤنڈ میں بھی شرعی پردہ نہیں ہے, رواجی پردہ ہے. شرعی پردہ بہت کم جگہوں پہ, بہت کم جگہوں پہ. تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا شریف پردہ ہے. اب ان کے خاندان میں इसकी चीज का रिवाज ही नहीं था, शरीफ पर्दा क्या रिवाज, रिवाजी पर्दा भी नहीं था। तो बड़ी हैरत मर्दों को भी औरतों को भी, हत्ता कि उनके बाज रिश्तेदार, जो रिश्तेदार तो थे लेकिन महरम नहीं थे, उन्होंने कहना शुरू किया, कमाले कैसे अजीब बात है, अपने शेख से पर्दा नहीं करती और हमसे पर्दा करती है। तो उसने उसे जवाब दिया कि हमने शेख ही से तो पर्दा सीखा है, शेख से हम पर्दा क्यों नहीं करती, शेख से तो पर्दा कर दिए, वही तो कब पर्दा करते, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो आए माशाल्लाह, उनकी जो रात इधर देख लिया सारा कुछ, और फिर माशाल्लाह वो सब बैत हो गए। मकसद मेरा ये है कि देखें जल्दबाजी, अब 3 महीने के बाद थी ना, अगर उस वक्त वो कहते कि पर्दा करो तो मुकाबला शुरू हो जाता, टसल शुरू हो जाता, नतीजतन वो बात न बनती जो बाद में बनी। हाँ जी, ये बहुत अहम बात है कि मुश्किलात जो इसमें आए उसको खातिर में न लाया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता तरीक़ेकार हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जाए। फसबिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल वला तस्तअजिल लहुम, ए मोहम्मद तू भी उस तरफ पमर्दी कर जिस तरफ पुख्ता इरादा वाले पैगंबरों ने की, और मुखालिफों के लिए उन मुखालिफों के लिए जल्दी न कर, जल्दी न कर। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी ताइफ में, वो कौन सी दुआ थी? बड़ी अजीब दुआ है, या अल्लाह, मतलब देखें बदवाने क्यों, या अल्लाह अगर ये वो नहीं लाएंगे ईमान तो मुमकिन है कि इनकी औलाद में से मुसलमान हो जाए, और ऐसे हुआ। हाँ जी, तो ये बात है उलुल अज़्मी, यही है उलुल अज़्म। किसको कहते हैं? चले आप जरा इसी को सोचें, उलुल अज़्म कहते हैं बड़े अज़्म वाला, बड़े अज़्म वाला, बड़े अज़्म वाले जो होते हैं वो छोटी बातों को खातिर में नहीं लाते, बस आपके सामने एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उस मंसूबे में जो फितरी छोटी छोटी रुकावटें आप उनको खातिर में न लाएं, अकड़ नहीं कोई बात नहीं, मतलब जाहिर है इस मकसद को हासिल करना है तो लिहाजा आप उसके बारे में वो नहीं करते, छोटी छोटी बातें आप बर्दाश्त करते हैं एक बहुत बड़े मकसद को हासिल करने के लिए। मैंने ये चीज़ सियासतदानों से सीखी है, सियासत वाले जो लोग होते हैं ना, इनके सामने एक टारगेट होता है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, समझते हैं कि ठीक है जी, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मतलब हमें करना चाहिए, उन वो दुनिया के लिए कर रहा, दीन के लिए करे, फर्क सिर्फ ये। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बेटे को ही नसीहत सुनाई गई कि हक की दावत तबलीग अमर बिलमारूफ और मुनकर का फ़र्ज पूरी इस्तेवारी से अदा कर, उस राह में जो मुसीबतें पेश आए उनका मर्दानावार मुकाबला कर, वह अमर बिलमारूफ अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, नेकी का हुक्म कर बुराई से रोको, जो मुसीबत पेश आए उसको बर्दाश्त कर, ये बड़ी पुख्ता बातों में से है। तबलीगी जुमात माशाल्लाह अल्लाह ताला के मसाई को कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस किस्म के नमूने मिला करते हैं, आवाम होते हैं लेकिन फिर भी चूंकि रास्ता ऐसा है तो एक दो शुरू को देखा देखी मतलब इस किस्म की सूरतें सामने आ जाती। एक दफा ऐसा हुआ था कि जुमात कहीं ऐसी जगह गई थी कि वहाँ बड़ी मुखालिफत थी, मतलब है कि इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते, आज तो कोई गया था के पी के का कोई साहब था, नहीं नहीं आता, नहीं पहली दफ़ा गया था, ये ज़रा थोड़े से मतलब होते हैं जज्बाती भी होते हैं, तो उन लोगों ने उनको बड़ी सुनाई, आके उन्होंने अमीर साहब से कहा कि ये ऐसे कपड़े गुस्से से बात की, तो अमीर साहब थोड़ा रोना शुरू कर लिया, रोते रहे। उन्होंने कहा हजरत कोई बात नहीं है, उन्होंने कुछ कह दिया, मतलब उनको तरस आया कि मेरे लिए रो रहे हैं, जी कोई बात नहीं, मतलब से ठीक है उनने गलत कहा, लेकिन मैं तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तो नहीं आया। अमीर साहब ने कहा आपके लिए नहीं रो, अपने लिए रो रहा हूँ कि देखो आपको अल्लाह ताला ने इतना जल्दी कबूल कर लिया और मैं इतने अरसे से चल रहा हूँ लेकिन ये कबूलियत नहीं हुई। क्या क्या मतलब? क्या ये मतलब है कि इस किस्म की बातें जो इनके साथ पेश आए वो कबूलियत की अलामत होती है? गोया कि अल्लाह पाक ने आपको मुजाहदे में जल्दी डाला, इन्हें आपको इस रास्ते में कबूल कर लिया गया। आज अब ये चीज़ें जो है सीखी जाती हैं बाकायदा। देखिए मैंने आपको बताया ना, सारे दीन के शोबे हैं माशाल्लाह, दरस व तदरीस दीन का शोबा है, तबलीग दीन का शोबा है, सियासत दीन का शोबा है, किताबें लिखना ये दीन का शोबा है, जहाद दीन का शोबा है, ये सारे शोबे, और हर शोबे में इस किस्म की चीज़ें आती हैं। हर शोबे के अपने अपने मसायब और मुश्किलात होती हैं। तो फिर बर्दाश्त करना होता है और उसके लिए अल्लाह पाक फिर मदद भी करते हैं। कुफार अज़ाब इलाही की जल्द न आने या हक की ज़ाहिरी बेकसी और बेबसी के सबब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल दोज तानों से तकलीफ पहुंचाते थे। हुकुम हुआ कि इन तानों की परवाह न कर, उन्हें से दिल को उदास कर, बल्कि अपने धुन में लगा रहे और देख तुझसे पहले पैगंबरों ने क्या किया। इसबिर अला मा यकूलून वस्कुर अब्दना दाऊद। हाँ जी, इनके किए पर सब्र कर, हमारे बंदे दाऊद को याद कर। इस कुव्वत सब्र के हुसूल का तरीके कि खुदा से लो लगाई जाए, उसकी ताकत पर भरोसा किया जाए। फसबिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्द रब्बिक क़ब्ल तुलूई शम्स। तो उनके कहने पर सब्र कर और सुबह शाम अपने परवरदिगार की हम्द कर। न सिर्फ ये कि मुखालिफों के इस्तान व तंज का ध्यान न किया जाए, बल्कि उसके जवाब में उनसे लुत्फ मरोवत बरता जाए। उलुल अज़्मी इसे कहते हैं। वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। तो इनके किए पर सब्र कर, उनसे खूबसूरती से अलग हो जा। एक दफा ऐसा हुआ था कि हम गए थे अकोड़ा खटक हक्कानिया, वहाँ मुफ्ती साहब है, मुफ्ती सैफुल्ला साहब, पुराने मुफ्ती साहब। तो हमने ये मीरास का प्रोग्राम कंप्यूटर के जरिए से बनाया था, तो मुख्तलिफ उलमा को के पास ले जाते थे ताकि एक तारफ हो जाए, अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस में इस्तेमाल होता मीरा, दार उलूम कराची में और इस तरह यानी हमारे लाहौर में दूसरे मदारस में इस्तेमाल होता रहा। तो ज़ाहिर है तो अपने लोग थे, तो इनके पास भी चला गया। मुफ्ती सैफुल्ला साहब उस वक़्त शायद कुछ हाल में थे, तो मुझसे फरमाया कि हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैंने कहा कि हज़रत इस पर एक किताब लिखी है, तो आप इस किताब को भी देख लीजिएगा, मीरास का आसानी साहब है, पर मैं हमारे लिए पुरानी किताबें काफ़ी। हाँ जी, वो मेरे साथ मौलाना अब्दुल कबीर मक्कानी साहब का एक रिश्तेदार था जो जवान था, वो बड़ा गुस्सा हो गया, उन्हीं कहला के कहते हो करीब तक कि वो कुछ कर लेता, क्योंकि जवान था, जवानों में जरा जज्बात होते हैं। मैंने उसको कोनी मारे कि कुछ कहना नहीं है। मैंने कहा कि सर दुआ के लिए आए हुए हैं, आप दुआ हमारे लिए करें। आज तो उन्हें हमारे लिए दुआ की, हाथ उठा दी और हमारे लिए दुआ की। अब जब बाहर आए तो मुझे कहते हो आपने मुझे क्यों रोका? मैं ऐसा कहता, मैं ऐसे कहते, आखिर मेहमान का भी कोई हक होता है, ये कोई तरीका है बात करने का? मैंने कहा खुदा के बंदे अगर आप ही कहते तो बद दुआ लेते, अब हमने दुआ ली, काम तो फिर भी ना होता, काम तो फिर भी ना होता और अब भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम दुआ तो ले ली ना, हमें तो मकसद ज़ाहिर अल्लाह को राजी करना। खैर जाके उनने मौलाना अब्दुल कबीर मक्कानी साहब से बात की, वो भी बड़े गुस्से हुए, ये कोई तरीका है ये? और मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा हमारा ये काम नहीं है कि नौज़ बिल्ला मिजाले हमें हमारी तारीफ़ की जाए, सिर्फ ये है कि एक तारुफ था बस, ठीक है वो कर लिया, हो गया। खैर जब हम चले गए तो बाद में अगली दफ़े जब गए तो वहाँ एक साहब थे जो मुझे जानते थे, वो बनू के थे, वो मुझे जानते थे। उनने मुफ्ती साहब से कहा, हजरत आपने क्या किया, ये तो शिविर अहमद का कहिल साहब थे और इस तरह था और इस तरह था। उनको बहुत अफसोस हुआ कि वाकई गलत बात हो गई। हाँ जी, अगली दफ़ा जब गया तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह उनने इकराम किया और कहा कि आपका नक्शा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसी पे नमाज़ पढ़ता हूँ, ये होता है वो होता है, बहुत मतलब जान मतलब लुत्फ मतलब जान उसके साथ बात की। मकसद ये है कि अब देखें, अगर हम लोग वही करते जो वो जवान करना चाहता था तो क्या ऐसी बात हो सकती थी, हमेशा के लिए रबता टूट जाता और काम ख़राब हो जाता। बस यही एक थोड़ी सी सब्र करना होता है, थोड़ा सब्र करना होता है, और उसमें अक़ल के इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आदमी अक़ल को इस्तेमाल कर ले कि भाई बात यह है कि अगर काम नहीं हो रहा तो आप आराम से इलादा हो जाए, वही है ना, वह जुर्म हजर जमीला, आप आराम से इलादा हो जाए, लड़ाई की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है जी आप अपनी तरफ के तौर पर बात कर ले। पहले जब हमने नमाजों के औकात पे काम शुरू किया बहुत सख्त हौसले शिकनी होती थी। यही कहानियाँ मदरसा में हमें, चूँकि करीब तरीन मदरसा हमारा यही है हमारे गांव के बहुत करीब, तो मैं गया और मैंने किताब हसन फतावा जिल्द मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब, वो फतावा का मजमू है, तो उसको इशू कर रहा था लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी के जो इंचार्ज थे वो आलिम थे जा रहे, मुझे कहते आप ये किताब क्यों इशू कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने माजों के अवकात पर काम करना चाहता हूँ कंप्यूटर के जरिए से। कहते बड़े लघु चीज़ पर काम कर रहे हो अच्छा सारे एक काम इस काम करने वाले के लिए तो बहुत सख्त तीर से मतलब होते हैं ना, दिल जख्मी हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बस ठीक है सही है इनकी अपनी राय। हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो वक्त भी आ गया कि जितनी फरमाइश आती है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। हाँ जी, मतलब यह है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वो मान भी लिया और जान भी लिया और हाँ जी और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि बस काम किए जाओ, काम किए जाओ, इसमें न गुस्सा होना है न बेसब्री करनी है और न काम को छोड़ना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वो कहते हो लगे रहो लगे रहो, लग जाइए आज आदमी कुछ ना कुछ मतलब उसको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अब दरगुजर करना, ये चौथा मफहूम है सब्र का। चौथा मफहूम है कि बुराई करने वालों की बुराई को नज़रअंदाज और जो बदखाई से पेश आए वो तकलीफ़ें दे उनके कसूर को माफ़ किया जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त में अखलाकी पाबंदी दिखाई जाए। कुरान पाक की कई आयतों में सब्र इस मफहूम में इस्तेमाल हुआ है, इरशाद होता है वह इन आकिब तुम फ़ाकब माकुब तुम भी वह इन सब्र तुम लोवा खैर वसबिर वमा सब्र अल्ला बिल्ला वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक मिम्मा यमकुरून, और अगर तुम सजा दो तो इसी कदर जिस कदर तुमको तकलीफ दी गई। ये इंसाफ का मामला है, इंसाफ का मामला। और अलबत्ता अगर सब्र यानी बर्दाश्त करो तो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है, और तू सब्र करो तेरा सब्र करना नहीं है, लेकिन खुदा की मदद से उनका गम न कर, उन्हें इनकी साजिशों से दिल तंग हो। ये बात है, ये वो मुजाहिदात है जो मसनून मुजाहिदात है और मनसूस मुजाहिदात है, इसके जरिए से माशाल्लाह इस्लाह बहुत आसानी के साथ हो सके। हमारे बड़े बड़े मशाख जो है ना इस तरीके से इलाज करते हैं, मतलब इन चीज़ों में मतलब जो है ना वो यानी वो तरबियत करते हैं और समझाते हैं, इसी के ज़रिए से माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह यानी इस्तेदाद पैदा हो जाती है। ये सब्र की वो किस्म है जो अखलाकी हैसियत से बहुत बड़ी बहादुरी है। मुसलमानों की इस बहादुरी की तालीम बार बार दी गई है, बताया गया ये सब्र बर्दाश्त कमजोरी से या दुश्मन के खौफ से या किसी और सबब से ना हो बल्कि सिर्फ खुदा के लिए हो। मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे अगर खुदा के लिए कर रहे तो किसी और से इसका अजर क्यों मांग रहे? इन अजरी इल्ला अल्लाह, जैसे पैगंबर कहते थे मेरा अजर किसी और से नहीं, मैं मांगता हूँ, मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ। अल्लाह ताला तो हमारे मांगने से ज़्यादा दिया करते हैं, वो तो अल्लाह ताला का कानून है। तो अल्लाह के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती है। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر کیا اور نماز کھڑی کی اور جو ہم نے ان کو روزی دی ان میں سے اچھے اور علانیہ راہ خدا میں خرچ کیا اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو آخرت کا انجام کیا اچھا۔ یہ اصل میں دیکھیں ماشاءاللہ دو باتوں کا سورۃ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں ذکر ہے، یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم، اس کا یہاں پر بھی ذکر ہے، لیکن کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ ہے کہ یہاں پر نیت پر زور دیا گیا، وہاں عمل پر ہے، یہاں پر نیت پر زور دیا گیا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے آخرت میں۔ ایک خاص بات اس بات کے خیال رکھنے کی کرنے کی لائق ہے کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن میں جس خاص وجہ پر اس کو سلامتی کی دعا دی وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، جس میں جو رک وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا۔ یہ تفسیر کا انوکھا انداز جو حضرت کا مطلب ہے کہ بات کو بالکل ایسی عملی طور پر گوئے کہ واضح فرماتے ہیں، مطلب بجائے اس کے کہ آپ اس پر غور کریں خود بخود وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا اس میں یعنی کس انداز سے بات کی، فرمایا ایک خاص بات اس بات میں خیال کرنے کی لائق ہے کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، یعنی اقام الصلاح کا ہے، انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ہے، ودرؤون بالحسنۃ السیئۃ اس کا ہے، لیکن فرشتے ان کو کیا کسی پر سلامتی کا وہ دے رہے ہیں؟ بما صبرتم۔ اس کا مطلب یہ تینوں کام تب ہو سکتے ہیں جب کسی میں صبر ہوگا۔ نماز بھی صبر ہی کا ایک شاہکار عبادت ہے، تھوڑا سا غور کر لیں، نماز میں جیسے ہی انسان داخل ہوتا ہے سارے کام بند۔ اور کل میرے پاس ایک ساتھی آئے تھے تو ان کو میں نے کہا آپ کے اوپر مطالعہ بند ہے، مطالعہ نہیں کرنا، بس جو آپ کے دفتر کے کام کا مطالعہ ہو تو کرو، اور باقی آپ کسی قسم کا مطالعہ نہیں کریں، مطالعے کے لیے اگر آپ کا دل چاہے اس کی جگہ ذکر کیا کر۔ اور مجھے پتہ ہے اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ مطالعے والا تھا۔ ہاں جی، اب یہ واقعی بات ہے کہ یعنی نماز جو ہے وہ کیا ہے، جس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا اب اس کے بعد آپ کے اوپر باقی سارے کام بند ہو گئے، اب صرف اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کرے تو واقعی بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا سوائے اللہ سے بات کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے خاص کر دیا، اس وقت کسی اور کے لیے اب نہیں ہے، تم صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، لیکن نفس جو ہے نا وہ تو ایسا ہے جیسے وہ مٹکا ہوتا ہے نا، تو اس میں پانی ہوتا ہے تو جہاں جہاں سے سوراخ ہوتا ہے وہاں سے پانی خود بخود بہنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح انسان کے نفس کے جو خیالات ہیں نا وہ خود بخود کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ سب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، نہ ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، بس صرف ایک بات کو سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ بات لوگوں کو مجاہدہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ کرتے نہیں جو ہونا چاہیے، جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، یعنی बदले नमाज में सब कुछ होते लेकिन नमाज नहीं होती। हाँ जी, ये वाली बात है। अगर वाकई सही मानो में नमाज हो तो आप सारी चीजों से रोक दिए गए, तो ये फिर मुजाहिदा है। इन्नस्सलात लकबीरतन, अब मेरे ख्याल में शायद का मतलब ही समझ में आया। इल्ला लिल खाशीन अल्लज़ीन सुन वन्ना मुलाक रब वन्ना मेरे राजू, बिल्कुल सब सही बात जोड़ रही है कि नमाज एक मुश्किल बात भारी है, मगर किन पर भारी नहीं, खुशू वालों पे नहीं। वो खुशू किस वजह से है, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वन्ना मेरे राजू, हमारा मामला किसके साथ होगा, अल्लाह के साथ होगा। तो उसके लिए तैयारी है, उसके लिए अपने आप को बनाना है, तो उस बनाने के लिए खुसूसी तौर पर आपको आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट कर दिया गया, ये ना कुरंतीना है नमाज जो है कुरंतीने, क्या वो किसी से ना मिले, सिर्फ बस अल्लाह ताला के साथ। तो ये बात है, इन्नस्सलात लकबीरतन इल्ला लिल्खाशीन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वन्ना मेरे राजू। सुभान अल्लाह। तो और वो सिर्फ सबर यानी बर्दाश्त की सिफत है, क्योंकि यही असल है जिसमें ये जोहर होगा, वो बादात की तकलीफ भी उठाएगा, मुसीबतों को भी झेलेगा और दुश्मनों की बदी का जवाब नेकी से भी देगा। चुनाचे एक और आयत में इसकी तशरीह भी कर दी गई कि दरगुजर और बदी के बदला नेकी की सिफत उसमें होगी जिसमें सबर होगा। वला तस्तविल हसनत वला सैया ए दफा बिल्लती हसन फैजल लजी बेन को बेन अदावत कन वली हमीम وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم। بلائی اور برائی، برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا جواب اچھائی سے دو تو ایک بار کی جس کے تم اور تمہارے درمیان دشمن ہے وہ قریبی دوست کا سا ہوگا، ہمارے سامنے مظاہرہ ہوا تھا بالکل، جن نے مخالفت کی بعد میں دوست بن گئے، اور مخالفت بھی غلط فہمی سے کی ہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذلک بدنیتی سے کی ہے کچھ اس طرح، ये उनका इश्तिहादी तौर पर एक फिक्र थी कि इन चीज़ों से नुकसान होगा दीन का, उनका ख्याल में ये बात थी। तो सोच के गोया के मतलब का फ़र्क था, मतलब ये कोई बदनीयती वाली बात नहीं थी कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो दीन की बात को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उसमें समझते थे कि ये कोई मेरे ख्याल में ये नहीं होते जो जदीदियत के जो दाई होती हैं और जो नई नई बातें दिन में निकालते हैं। हाँ जी, इस लिहाज से उन्होंने मतलब को है कि ये सोच के मतलब इख्तलाफ किया, तो उस वक्त गर्म चीज़ में तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना, वो जो उनके गलत फहमी थी उसको तो आप डिस्कशन से दूर नहीं कर सकते थे फौरन, तो उसके लिए टाइम चाहिए था। तो टाइम चाहिए के लिए दफल वक्ती होता है, दफल वक्ती जो है एक लफ्ज़ है जो बहुत गहरा लफ्ज़ है, यानी वक़्त गेन करना, वक़्त को हासिल करना उस वक़्त में कि वो मामला सही सही तौर से उनके समझ में आ जाए, वरना ये है कि अगर आप वो नहीं करते तो मामला मज़ीद ख़राब होगा। तो उस ख़राबी से बचने के लिए आप वक्ती तौर पर उसको कोशिश करते कि किस तरीके से मामला टल जाए, फिर बाद में इस पर बात हो सकती है। ये दफल वक्ती जो होता है ये बहुत अहम चीज़ होती है, बिलखसूस ये माशरती मसाइल में बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, तो ये है कि वो करीबी दोस्त हो जाएगा, और ये बात उसको मिलती है जो सब्र करते हैं, और ये इसी को मिलती है जो बड़ी किस्मत वाला है, यानी सब्र वाले बड़े किस्मत वाले होते हैं, सब्र वाले बड़े किस्मत वाले होते हैं, वाकईतन बड़ी किस्मत। इन्नल्लाह मा सबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, जिनके साथ अल्लाह होगा तो वो बड़ी किस्मत वाले नहीं होंगे। जो लोगों पर जुल्म करते फिरते और मुल्क में नाहक फसाद बरपा करते उन पर खुदा का अजाब होगा। इसलिए एक साहब आज़म मुसलमान का फर्ज है कि दूसरे के दूसरे उस पर जुल्म करे तो बहादुरी से उसको बर्दाश्त करे और माफ़ कर दे। फरमाया इन्नमस्सबीरुल्लज़ीन यज़लमून-नास वयबगून फिल अर्ध बिग़ैर हक उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबर वग़फ़र इन ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। रास्ता उन्हीं पर है जो लोग पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद करते हैं, यही हैं जिनके लिए पुरदर्द अजाब है, अलबत्ता जिसने बर्दाश्त किया और बख्श दिया बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। ये वाकई बड़ी हिम्मत का काम है, इंसान नहीं कर सकता। कहते हैं कि एक साहब थे, उनके पास इस्म आजम था। तो एक नौजवान आया, उन्होंने कहा जी आप मुझे इस्म आजम सिखा दे। उन्होंने कहा तू इस काबिल नहीं है। उसने कहा हजरत आप मुझे सिखा दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस काबिल हो जाऊं। उन्होंने कहा भाई तू कर नहीं सकता, मुझे पता है, मुझे तेरा अंदाजा है, तू इस काबिल नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप कोई इम्तिहान कर ले। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जाए फलां वादी है, उस वादी में बैठ जाओ, वो जो कुछ हो रहा है ना तो आपने मुझे आके रिपोर्ट देनी है कि क्या देखा है शाम को। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके उस वादी में बैठ गए। शाम को आया जी क्या हुआ जी, कहते बस आम काम ही होते रहे, कोई ख़ास काम नहीं था, बस सिर्फ एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा ऐसा था जिसमें आपने मुझे रोक दिया था, कुछ करना नहीं है वरना मैं कुछ करता। उन्होंने कहा क्या बात थी, कहते एक बूढ़ा आदमी था, उसके साथ गद्दा था, उस पर कुछ सामान था, एक पुलिस वाला आया, उसको पकड़ा, उसको मारा, गद्दे भी उससे छीन लिया, सामान भी उससे छीन लिया, वो एक तरफ चला गया। तो मुझे बहुत तरस आया, मैंने कहा अगर मुझे आपने रोका ना होता ना तो मैंने उस पुलिस वाले के साथ कुछ करना था। उन्हें खबर भी है कि कौन थे बूढ़ा? उन्होंने कहा कौन था? कहते मेरे उस्ताद है इसमें आजम का, जिसने मुझे सिखा है। उसने कहा था कि अगर मेरे साथ इसमें आजम होता तो मैं उसके साथ कुछ करता ना, तो उन्होंने कहा ये मेरे उस्ताद जिसने मुझे इसमें आजम सिखाया। तो ये वाकयतन बड़े सब्र वाला काम है कि इंसान कुछ कर सके और ना करे, न कर सके वो तो इला और कार्य दरवेश पर जाने दरवेश, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं और फिर भी ना करे वो फिर वाकई उल लाजमी है। साबित कदमी, सब्र का पांचवा मफहूम लड़ाई में पेश आ जाने की सूरत में मैदान जंग में बहादराना इस्तेकामत साबित कदमी है। कुरान पाक में इस लफ्ज़ कुरान पाक ने इस लफ्ज़ को इस मफहूम में बार बार इस्तेमाल किया और इस लोग को जिस वसफ मुतसिफ हुए सादिकुल कौल और रसबाज करार दिए कि उन्होंने खुदा से जो वादा किया था पूरा किया। फरमाया والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون। और सब्र करने वाले, साबित कदमी दिखाने वाले मुसीबत में और नुकसान में और लड़ाई के वक्त वही है जो सच बोले और वही परहेजगार हैं। अगर लड़ाई आ पड़े हो तो इसमें कामयाबी की चार शर्तें, खुदा की याद, इमाम वक्त की इताअत, आपस में इत्तेहाद मुआफिकत और मैदान जंग में बहादुरान सब्र इस्तिकामत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ितनतन فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واتقوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين। اے ایمان والو جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر دکھاؤ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے। ये बात हक के यादगारों की ज़ाहरी किल्लत तादाद की तलाफी उसी सब्र व सबात की रूहानी कुव्वत से होती है। तारीख की नज़र से मुशाहदे पर अक्सर गुजरे कि चंद मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम बहादुरों ने फौज की फौज को शिकस्त दिए। इस्लाम ने नुकता इसी वक्त अपने जान निसारों को सिखा दिया था जब उनकी तादाद थोड़ी, दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। या अय्युहन नबी हर्दिल मोमिन अल कितार इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबु मिएतैन وَيَكُمْ مِنْكُمْ مَنْ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَيَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ। اے پیغمبر ایمان والوں کی دشمنوں کی لڑائی پر ابھارو، اگر یہ 20 صبر کرنے والے ثابت قدم ہو تو 200 پر غالب آ جائیں، ایک نسبت 10، اور اگر 100 ہوں تو کافروں میں سے 1000 پر غالب ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری آئے तो अगर 100 सब्र करने वाले साबित कदम हो तो 200 पर गालिब होंगे, अगर 1000 सब्र वाले हों तो 2000 पर खुदा के हुक्म से गालिब होंगे। और अल्लाह सब्र करने वालों साबित कदमों के साथ है। मतलब यह है कि जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक है और अल्लाह पर भरोसा है तो उस वजह से वो अपनी तादाद को नहीं देखेंगे बल्कि अल्लाह की नुसरत को देखेंगे और अल्लाह के हुक्म को देखेंगे। ऐसी सूरत में वो नफ्सियाती तौर पर उन पर भारी होंगे। वो जंग नफ्सियाती तौर पर ही जीती जाती है और नफ्सियाती तौर पर हारी जाती है। यानी जंग में बड़ी कोशिश यही होती है कि नफ्सियाती तौर पर लोगों को हरा दिया जाए, फिर इसके बाद उनमें कुछ नहीं रहता, फिर वो रेत के गरौंदे की तरह होते हैं, बस डे हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर नफ्सियाती तौर पर मजबूत हो तो उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जंग में पूरी दुनिया ने ये चीज़ देख ली कि ये शिकस्त किस वजह से हुई उनको, यही बात है और तो कुछ बात नहीं है। यानी ये बात जो मुल्ला उमर ने की थी, अजीब बात है, मतलब जाहिर आदमी हैरान हो जाता कि आएंगे तुम तो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे अपनी मर्जी से, हमारे मर्जी से जाओ। अब देख लो, दुनिया ने देख लिया कि कितनी सच्ची बात थी। आज मुल्ला उमर नहीं है लेकिन उनकी बात बिल्कुल वाजे है। तो ये जो चीज़ है, मतलब यह है कि साबित कदमी, अल्लाह पर भरोसा और ये इस्तेकामत, वो ऐसी चीज़ है कि जो पहाड़ को हिला देते। तो यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने यही, बल्कि मैं कहता हूँ कि कुरानी आयात की तशरीह यहाँ अमली तौर पर हुई है। कुरानी आयात की तशरीह अमली तौर पर अल्लाह पाक ने मतलब यहाँ करवा दी। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, लेनन ने सवाल किया था हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, उनसे मुलाकात हुई थी उनकी। तो ये सवाल किया था उसने कि इस्लाम को तो मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा मज़हब है, लेनन ने कहा, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम नाफिज कहाँ है? कोई एक रियासत बताओ जहाँ इस्लाम नाफिज। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह खामोश, कि कोई अमली मिसाल उस वक्त नहीं थी। अगर ये अफगानिस्तान का वाकया उससे पहले पेश आता तो उनको जवाब दिया जा सकता था कि इस्लाम यहाँ पर नाफिज़ है और इस्लाम के नफाज के बरकात भी दुनिया ने देख लिए, तभी तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई कि उनको ख़त्म किया जाए। क्या आप अंदाज़ा कर ले कि करोड़ों के प्रोजेक्ट लाखों में होते थे, दो तालिबान होते थे पूरे बाजार में और सारे दुकानदार ठीक होते। हाँ जी, कोई किसी मुसाफिर को नहीं मतलब नुकसान पहुंचा सकता था। और दुनिया देख लिया कि सोने से लदी हुई औरत जाए और उसको कोई छेड़े नहीं, देख लिया अल्लाह पाक। मुख्तसर वक्त था लेकिन अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि ये चीज़ है और अब भी हो सकता है। तो इस वजह से कुरान पाक की और हदीस शरीफ की जो अमली तफसीर इन आयात मुबारक की और हदीस शरीफ की जो अल्लाह पाक ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अमली तफसीर वहाँ पर हो गई। और ये हमारा बहुत बड़ा सासा है, हम इस पर फख्र भी कर सकते हैं, इसका जिक्र भी कर सकते हैं। हाँ जी, और बयान भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये बयान नहीं किया जाए। इसमें पूरी कोशिश है कि हमारे नसाब से ऐसी चीज़ निकाली जाए और मतलब ज़ुबान पर ऐसी बात ना आए और फलां, और मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ तरीके वो चल रहे हैं, लेकिन चीज़ तो वही है, मतलब हक हक है और बातिल बातिल है। वजाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, यानी साफ बिल्कुल सामने नज़र आती बात, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। हम खुद सियासी लोग नहीं हैं लेकिन नतीजे को तो देख सकते हैं ना कि नतीजा तो मतलब क्या आ रहा है, किस चीज़ का नतीजा क्या आ रहा है। तो जैसे बाद लोग होते हैं ना, क्रिकेट जानते नहीं लेकिन क्रिकेट पर तबसरा कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छे खिलाड़ी को बुरे खिलाड़ी को जानते हैं और कहते हैं कि इस तरह और इस तरह, हालांकि उसको खुद उसको खेलने दिया जाए तो नहीं खेल सकता, उसको पता भी नहीं होता। तो ये मकसद है, मतलब कि हम लोग खुद सियासी नहीं हैं लेकिन कम से कम नतीजे को तो जान सकते हैं, नतीजे को तो देख रहे हैं ना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता। मैदान कारदार में मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपनी तादाद ही किल्लत की परवाह न करे और सब्र सबात के साथ अपने दुचंद मुकाबले का मुकाबला करे। वो तसल्ली दी कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो सब्र सबात से काम लेते हैं। हर तालूत और जालूत की किस्म में भी इस नुक्ता को इन लफ्ज़ों में अदा किया गया। قالوا لا تقدرنا اليوم بجالوت وجنودي فقال الذين ظنوا ان ملاقى الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। تالوت کے ساتھیوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کی طاقت نہیں۔ انہوں نے جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے یہ کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں اور خدا صبر ثبات دکھانے والے کے ساتھ ہے، اور جب جالوت اس کی فوج کے مقابلے میں ہے تو بولے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر بہا۔ یہ دعا کا ایک بہت ہی عاجزانہ انداز ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے اردو کا لفظ پورا وہ نہیں کر سکتا، اس عربی کے اس لفظ کا یعنی مطلب مفہوم بہانے والی بات سے افریغ آنے ہاں جی تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت یعنی اس سے مطلب پتہ چلتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم پر اس جنب وہ صبر بہا اور ہم کو ثابت قدمی بخش، وہ ان کافروں کے مقابلے میں ہم کو نصرت عطا کر۔ یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے جادوگر اور جب مسلمان ہوئے اور فرعون نے ان کو کہا کہ تمہارا مطلب جو ہے نا وہ ایسا کروں ایسا کروں گا، اس وقت بھی اللہ پاک سے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اس سے تو کہا کہ تم کر کر سن جو کہ تم کرنا چاہتے ہو فخر مار، لیکن اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پر سب۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فاطمے لے لے۔ اللہ نے کمزور اور قلیل تعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہ شرط رکھی اور بتا دیا کہ خدا انہی کا ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے اور خدا کے بھروسے پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، پھر تیرے بڑے ان کے لیے جنہیں عذاب آنے کے بعد گھر بار چھوڑا پھر لڑتے رہے اور صبر ثبات کے ساتھ ٹھہر رہے، پورا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اسی پہ پورا کرتے ہیں وقت کے لحاظ سے، کیونکہ ہم نے ابھی انشاءاللہ جو دور تنجینا ہے یہ پڑھنا ہے۔ دور تنجینا کو اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس کے ترجمے پہ غور کر لیں بہترین دعا ہے، لیکن درود شریف کے ساتھ، یعنی گویا کہ درود ہے لیکن دعائیہ درود ہے جس میں ہم اپنے تمام مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد فرما دے۔ تو آج کل مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں اس وقت اللہ پاک سے دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ان وسیلوں کو پکڑنا چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا سید جمیل حاجات، وسیلہ ہو گیا نا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس وسیلے کو پکڑنا چاہیے، اللہ پاک ہم پر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمته.